Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
और मिट्टी और सूत दोनों धरती हैं, पृथ्वी तत्व है, और दोनों जल तत्व हैं, दोनों वायु तत्व हैं, दोनों आकाश तत्व हैं, दोनों ब्रह्म हैं, इसलिए ब्रह्म तो नहीं कटेगा, चाहे घड़ा हो चाहे कपड़ा हो। लेकिन जो इनका व्यावहारिक रूप है वो तो एक दूसरे को काटेगा। ये निर्भय होने का रास्ता है, वेदांत जो है ये निर्भय होने का रास्ता है, कुछ करके नहीं, अपने स्वरूप को जानने मात्र से। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, ये श्रुति यहां इस प्रकार से पूरी हो जाती है। अब कहते हैं कि इसका फल क्या है, तो अगली श्रुति है, यो वेद निहतम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिते थी। यो वेद निहतम गुहायाम, इस परमात्मा को कहां खोजें, काहे रे बन ढूंढन जाइए। किसी ने कहा जंगल में है, किसी ने कहा मंदिर में है। एक पुस्तक है एडवेंचर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, स्वामी यतीश्वरानंद रामकृष्ण मिशन के, तो उसमें सबसे पहला एनेक्डोट यही है कि किसी कोई मां क्रिश्चियन थी, प्रवचन है उनके तो वहीं दिए होंगे, विदेश में ही क्रिश्चियन थी, तो वो अपने बेटे से कहती थी कि चर्च जाया कर। अब वो चर्च ना जाए, एक दिन बहुत झगड़ा हुआ इस बात पे, तो उस लड़के ने कहा कि मां एक बात बताओ, तुम किसी आदमी से मिलने जाओ और जाकर दरवाजा खटखटाओ और दरवाजा खुल भी जाए और भीतर मिलने वाला आपसे मिले ही नहीं, तो दोबारा उसके पास जाओगे? तो बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो बोले चर्च में मैं एक बार गया था, लेकिन मुझे तो वहां पर ईसा मसीह मिले, ना मेरी मिली और ना गॉड मिला, अब मैं चर्च क्यों जाऊं ना। तो जिसने जहां बताया, लोग ऐसे ही भाग छूटते हैं, जंगल में मिलेगा तो जंगल में भाग छूटे, बंबई में मिलेगा तो बंबई भाग छूटे, मंदिर में मिलेगा, आश्रमों में मिलेगा, बोले हृदय में मिलेगा, तो आंख बंद करके आसन लगा के बैठ के हृदय में मिलेगा। अब कोई जो ये बताता है कि ये जो ढूंढने वाला है ये कौन है, इसको तो मालूम करो। तो जब ढूंढा तो मालूम पाया कि जो ढूंढने वाला था वही था। तुम्हारा ऐसे किस्सा सुनाते थे ना कि कोई जेब कतरा लग गया किसी सेठ के पीछे, काफी पैसा लेकर चला कलकत्ते से, तो अब वो जेब कतरे को पता लग गया कि पैसा तो इसके पास रखा है, कहां रखा है, तो जब वो सो जाए, नहीं बाथरूम जाए, जब वो बाथरूम जाए तो उसके सारे सामान की तलाशी ले लेता वो, अब कहीं उसे वो पैसा ना मिला। दिल्ली आना था तो दिल्ली आके वो उतरा जेब कतरा, उसने उसके चरण पकड़ लिए सेठ के, बोले आप गुरु मैं चेला, मैं जेब कतरा हूं और आपके पीछे वहां से लगा हुआ हूं, मैंने आपका सारा सामान खकोर लिया, अब आप ये बताओ कि वो रुपया आपने कहां रखा, इतना रुपया है ये तो मुझे मालूम है कितना रुपया लेकर चले। अरे बोले अब तो मैं आ ही गया, आप छोड़ इस बात को क्या है, कि नहीं नहीं बताइए। तो उसने कहा कि भाई जब तू बाथरूम जाता था या सोता था तो मैं अपना रुपया तेरे कोट में रख देता था तो तू मेरा सामान तो देखता था, अपना सामान कभी नहीं देखता था, क्योंकि उसमें तो होने की गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे ही दुनिया जो है वो परमात्मा को बाहर तो देखती है, लेकिन इस ढूंढने वाले में उस परमात्मा को कोई कोई देखता है। जो देखता है उसको इसी जीवन में मिल भी जाता है, और जो नहीं देखता है तो अन्य रूप से जो दिख रहा है उसको तो भगवान मानता नहीं है, और जैसा भगवान वो चाहता है वैसा उसे दिखता भी नहीं है। अब चार भुजा का भगवान आपको कहां दिखेगा, सब दो भुजा वाले ही दिखेंगे। तो ऐसी बात है, यो वेद निहतम गुहायाम परमे व्योमन, गुहा शब्द का अर्थ शंकराचार्य भगवान ने किया, गुहा माने गुफा, गुफा अर्थात जहां छुपने की जगह हो उसको बोलते हैं गुहा, गुह माने छिपना। तो परमात्मा कहां छिप गया है, तो बोले तुम्हारी बुद्धि में छिप गया है। ये बुद्धि दिमाग में की जगह पे है, मस्तिष्क की जगह पे है, या यहां हृदय में है, ऐसा मत सोचना। ये तो सूक्ष्म शरीर पूरे शरीर में व्याप्त रहता है ना, तो पूरे शरीर में ही बुद्धि व्याप्त रहती है, पूरे शरीर में ही हृदय व्याप्त रहता है, प्राण व्याप्त रहते हैं, पूरे शरीर में ही व्याप्त रहते हैं। ये तो सब इनके ऑफिस हैं, जो ये मस्तिष्क में जो बने हुए हैं सेंटर्स हैं काम करने के, बाकी पूरे शरीर में ही रहते हैं। तो ये जो हमारा ज्ञान है कि मैं कौन हूं और ये कौन है, यही बुद्धि है। बुद्धि माने विज्ञान का केंद्र, बस इसमें ही छिपा हुआ है। तो बोले कैसे छिपा हुआ है, आत्मा क्या छिप सकता है, ब्रह्म जो अनंत है वो क्या छिप सकती है, नहीं छिप सकता। बोले छिप सकती है कि कैसे, कि अंधेरे के कारण उसको कुछ का कुछ मान लो तो वो चीज छिप जाती है, अंधेरे के कारण रस्सी को सांप समझ लो तो रस्सी छिप गई, लेकिन जब आप सांप देख रहे हो तब भी तो रस्सी को ही देख रहे हो ना, वो रस्सी को रस्सी नहीं देख रहे, रस्सी को सांप देख रहे हैं। इसको मांडूक्य उपनिषद की भाषा में कहते हैं कि जहां अग्रहण होता है वहीं अन्यथा ग्रहण होता है। अग्रहण माने जब हम रस्सी को रस्सी नहीं देखते तब उसका अन्यथा अर्थात दूसरे रूप से ग्रहण कर लेते हैं। अगर रस्सी को रस्सी देखे तो रस्सी तो जाहिर जरूर है। तो ब्रह्म तो नारायण सारे सब जगह है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, लेकिन ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, इसी में तो सारी दुनिया फंसी हुई है ना, हम ब्रह्म कैसे मान लेंगे। ये एक होती है सफिशिएंट कंडीशन, एक होती है नेसेसरी कंडीशन, और एक होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये हमारे गणित शास्त्र में ऐसा थियरम्स में आता है। तो ब्रह्म ज्ञान की नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है वैराग्य। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, और वैराग्य माने सिर्फ राग और द्वेष का शिथिल होना, इसको वैराग्य बोलते हैं। ये महाराष्ट्र की परिभाषा है। शास्त्र को पढ़ोगे तो वैराग्य का दूसरा रूप मालूम पड़ेगा, लेकिन वो तो फिर दुर्गम हो जाएगा और वो पता नहीं किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राग द्वेष का इतना शिथिल हो जाना कि वो इष्ट के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके, जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके, और द्वेष के प्रति हमको किसी विद्वेष के कार्य में प्रेरित न कर सके। निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, सब भूतों के प्रति निर्वैरा हो। ये नहीं कहा कि सबको ब्रह्म जानो, निर्वैर हो, किसी से द्वेष मत करो। तुलसीदास जी ने भी यही भाषा का प्रयोग किया, निज प्रभु में देखें जगत कासन करें विरोध, कि विरोध किसी से नहीं। अपने महाराजा श्री की जो पॉपुलैरिटी थी उसका एक कारण यह भी था, पूरा वृंदावन संप्रदाय का गढ़ है नारायणियों, समझ लो। अगर आपने उनके मन के अनुसार नहीं बोला तो खाओ खाओ करके आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन उसी वृंदावन में महाराजा श्री जो हैं वो इतने सर्वग्राह्य हुए, वो कहते थे भाई जिन चीजों में हमारा तुम्हारा विरोध है उनकी हम चर्चा क्यों करें, जिन चीज में हमारा तुम्हारा ऐक्य है उनकी चर्चा करते हैं। तो जब आप विरोध का त्याग कर देते हैं तो सबके प्रिय हो जाते हैं, और जब अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो वो फिर प्रिय नहीं होते हैं। वो कहते हैं अरे तो अड़ियल टट्टू है, इससे बात मत करो, ये अपनी बात तो छोड़ेगा नहीं। तो राग और द्वेष का शिथिल होना ये तो नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। बिना वैराग्य हुए ज्ञान नहीं होगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन किसी को वैराग्य हो जाए तो ज्ञान हो ही जाए, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। बिनु गुरु होए के ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिनु, दो कंडीशन बताई उन्होंने। गुरु के बिना भी ज्ञान नहीं होता और वैराग्य के बिना भी ज्ञान नहीं होता। माने अगर आप तत्वमसी इत्यादि महावाक्यों का विचार गुरु मुख से करोगे ही नहीं, वेदांत श्रवण करोगे ही नहीं, तब भी ज्ञान नहीं होगा, और वैराग्य नहीं होगा तब भी ज्ञान नहीं होगा। तो ये बुद्धि में मान लो हमको सांप दिख रहा है रस्सी में, दिख तो रहा है रस्सी लेकिन सांप के प्रति भय है, तो हम उसको कभी रस्सी जान नहीं सकते, मान तो लेंगे लेकिन जान नहीं सकते। और किसी कोई है लोभी तो उसको दिख रही है कि तो सोने की माला पड़ी हुई है, तो इधर उधर देखता रहेगा, किसी की नजर बचे तो मैं उठा लूं, भले ही चाहे सांप ही पड़ा हो। तो उसको भी चूंकि वैराग्य नहीं है उसको भी रस्सी का ज्ञान नहीं होगा। और जो उपेक्षा करता है होगा कुछ हमें क्या मतलब है, उसको भी ज्ञान नहीं होगा, वो तो निकल जाएगा। तो ये तीन ही प्रवृत्ति के हेतु हैं, राग द्वेष और उपेक्षा। ये तीनों जो हैं नहीं हो ये तो आवश्यक है, लेकिन ये हो तो ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं है। जब तक कि कोई बताएगा नहीं कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म ऐसा होता है और तुम लक्षण मिला लो इसलिए तुम ब्रह्म हो। तो यो वेद निहतम गुहायाम परमे व्योमन ये ब्रह्म कहां छिपा हुआ है, तो बोले बुद्धि रूपी परम आकाश की गुफा में छुप गया है। अब ये सारी ब्रह्मानंद वल्ली जो है वो इसी बुद्धि रूपी गुफा में कैसे छिपा हुआ है यही बताने के लिए है। ये जो पंचकोश विवेक है, ये पंचकोश बुद्धि में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते हैं। तो बुद्धि में आत्मा को हम किसी न किसी कोश में मान लेते हैं, जैसे कोई रस्सी मान लेता, वो सांप मान लेता है, कोई माला मान लेता है, कोई कुछ मान लेता है। तो किसी ने अन्नमय कोश मान रखा है, यही मैं आत्मा हूं। किसी ने प्राण को आत्मा मान रखा है, किसी ने इंद्रियों को आत्मा मान रखा है, किसी ने मन को मान रखा है, किसी ने बुद्धि को मान रखा है, किसी ने सुख को मान रखा है, और कोई कोई तो अविद्या को ही नारायण ब्रह्म बोलते हैं। बोले कुछ मालूम ना पड़े, बस यही ब्राह्मी स्थिति है। ये कितने कोश होते हैं, आप तो वेदांती हो, पांच कोश तो प्रसिद्ध है ना, कि पांच कोश होते हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। अरे नारायण, सात कोश होते हैं। छठा और सातवां कौन सा है? ये छठा कोश तो संबंध कोश कहलाता है। ये जो हमारे शरीर के साथ जितने संबंध है, संबंधी हैं, ये जो जुड़ा हुआ है इनसे बाहर, इनकी रस्सियों को तो काटते नहीं है। और बस मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, मैं तो इसका साक्षी हूं, तो ऐसे ज्ञान नहीं होता। जननी जनक बंधु सुत दारा, और जन धन भवन सुहृद परिवार, ये दस जगह ये हमारे संबंध बने हुए हैं। जननी माता, जनक बंधु, सुत और दारा पत्नी, और जन अपने अहबाब, दोस्त अहबाब, और धन और भवन और सुहृद जो हमारा भला चाहने वाले हमसे बड़े हैं, और परिवार। परिवार में चाहे से लड़ाई क्यों ना होती हो, लेकिन वो परिवार से किसी को मोह भंग नहीं होता। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। दस जगह से ममता काटनी पड़ती है, तब ये संबंध कोश कटता है। तो बोले हम ये मान लें कि हमारी कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है। अरे भीतर भीतर तो मान लो, बाहर बाहर चाहे कुछ भी करो। ये जो मोहब्बत है ना, महाराज जी तो मोहब्बत को मोहव्रत बोलते थे। मोहब्बत माने मोह का व्रत, मोहव्रत। तो ये जो मोहब्बत है, जहां जहां पड़ी हुई है, इस मोहब्बत को काटना है। आदमियों को काटने से कोई मतलब नहीं है। तो संबंध, छठा कोश संबंध कोश है, और सातवां कोश अविद्या कोश है। सात कोशों से मुक्ति मिले तब ये परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो यो वेद निहतम गुहायाम परमे व्योमन, जो इस बुद्धि रूपी गुफा में इस आत्मा को छिपा हुआ जानते हैं, बस यही है, ढूंढ लो। ढूंढा, मिल गया? बोले मिल गया। क्या प्रमाण है कि मिल गया? सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। इसका प्रमाण यह है कि अब आप किसी कामना की पूर्ति के लिए अलग अलग परेशान प्रवृत्त नहीं होंगे। ये कामना हमारी पूरी हो जाए, ये कामना हमारी पूरी हो जाए, ये कामना। बोले क्यों? कि ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो बोले धन आ जाएगा। बोले धन की जरूरत ही नहीं रही। मकान आ जाएगा कि मकान की जरूरत ही नहीं रही। ये जो संसार की चीजें मिलती हैं ना, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रारब्ध जो है सबसे बड़ा मुख्य फैक्टर है। हम चाहते हैं कि हमको ये वस्तु मिल जाए, लेकिन प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलती है। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है। बहुत कुछ मिल जाता होगा सामग्री, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। तो कामनाओं को मैंने प्रारब्ध हो, इंद्रियां हमारे भोग की ठीक हो, जागृत हो मन, सोया हुआ ना हो, और भीतर से इच्छा हो, महत्व हो उस भोग को भोगने की, तब वो भोग सुख रूप मालूम पड़ेगा। अब बोले इच्छा ही नहीं है, कौन इच्छा करे? ये इच्छा जो है ये अपने को ब्रह्म न जानने का फल है। अपने को जब हम क्षुद्र जानते हैं, छोटा जानते हैं, सीमित जानते हैं, परिच्छिन्न जानते हैं, तो हमारे पास ये है और ये नहीं है, ऐसा हमको बोध होता है। जिस जो नहीं है उसकी इच्छा होती है, फिर जिसकी इच्छा होती है उसके लिए कर्म होता है। कर्म सफल हो गया तो कामना बढ़ जाती है, लोभ हो जाता है। सफल नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है। सफल हो गया तो मोह आ जाता है, वैसा ही बना रहे। मोह हो गया तो दंभ आ जाता है, मद मात्सर्य। ये सब मूल में ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण ही सब होता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक अपने आप आते चले जाते। तो सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते इति। वो व्यक्ति जो विपश्चित हो गया है, विपश्चित माने ज्ञानवान, ज्ञानवान की जगह कर लो तत्वज्ञानी। विपश्चिता का अर्थ भाष्यकार ने तो किया है मेधावी, और श्री सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने किया है जो शास्त्रीय मेधा के धनी है। अरे बुद्धि भगवान ने दी है तो शास्त्र के भीतर घुसाओ इसको, ऊपर ऊपर पल्लव ग्राही ज्ञान करके क्या करोगे? देखो बुद्धि कहां तक प्रवेश करती है। तो जो शास्त्र की मेधा के धनी है उनको तो यही पता चलता है कि मैं अखंड ब्रह्म हूं, ब्रह्मानंद मेरा स्वरूप है। कोई कामना भोगो उसका अल्टीमेट फल क्या है? आनंद ही तो है ना। अगर कामना का फल आनंद नहीं है तो कौन कामना को भोगना चाहेगा? तो चूंकि वो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है इसलिए उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूर्ण हो जाती हैं। अलग अलग वो किसी कामना के लिए प्रेरित नहीं होता। यो वेद निहतम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। यहां सह का अर्थ जैसे गीता प्रेस की किताबों में है, ब्रह्म के साथ ऐसा किया है, माने ब्रह्म का भी अनुभव होता है और कामनाएं भी उसकी पूरी होती जाती हैं, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। तो भाष्यकार ने और सुरेश्वराचार्य जी ने कहा है कि अगर ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर ब्रह्म को भेद स्वरूप मानना पड़ेगा। ब्रह्म भी रहता है, कामना भी रहती हैं, उसका फल सुख भी अलग महसूस होता है। अरे हाथी के पैर में सबका पैर, ब्रह्मानंद जिसको मिल गया उसको अलग अलग आनंद की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। आज हनुमत जयंती है तो हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति में एक श्लोक बोल देते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुं ज्ञान नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सुर चौपर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नारायण।